मा काना लिया मिन इल्मिन, नहीं है मेरे लिए कोई इल्म, बिल मलाइल आला, मुझे कोई मलाइल आला के बारे में इल्म नहीं है। इस यख्तसिमून, जब वो झगड़ते हैं, जब वो जिस किस चीज में वो झगड़ा कर रहे हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी मुझे तो अल्लाह ताला जो बता दे बस मुझे उसका इल्म है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं इल्म नहीं है कि वो किस चीज के बारे में झगड़ रहे हैं। तो ये कौन से है मला आला, जो आला यानी जो आसमानों पे फरिश्ते हैं उनके बारे में कहा गया कि वो मला आला किस चीज के बारे में झगड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता, यानी जो मुझे अल्लाह ने बता दिया मैं सिर्फ उतना जानता हूँ। और अल्लाह ताला ने क्या फिर बताया, इससे पता चलता है ये इंसान जमीन पे बैठा हुआ तो आसमान की खबरें नहीं जान सकता। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं इसका मतलब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, तो वो आगे इंसानों को बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से तो नहीं जानते ना। तो एक किस चीज में वो नंबर वन किस चीज में झगड़ रहे थे, जिसका आगे जिक्र आ रहा है, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाने का इरादा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि फरिश्तों के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा या अल्लाह इसकी क्या जरूरत है, हम जो है आपकी तस्बीह करने वाले, आपके हमद बयान करने वाले, आपकी तकदीस करने वाले, अल्लाह हम जो है ये तो खून खराबा करेगा, ये तो फसाद करेगा जमीन पे। ये यानी एक फरिश्तों में एक इख्तलाफ हुआ इस बात के ऊपर, और ये नहीं था कि फरिश्तों ने कोई इतराज़ किया कि अल्लाह आपकी नाउज़ुबिल्ला कोई फैसला सही नहीं है और हम सही आपको बताएंगे, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि आप कोई इसके ऊपर बात कहो, अल्लाह ताला का इज़्ज़न था, अल्लाह के इज़्ज़न से वो बोले थे। तो एक तो ये है, दूसरा एक हदीस में आता है, सही हदीस है, मुस्नद अहमद में है, कि एक दिन सुबह की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर लगा दी, यहाँ तक कि सूरज तुलू होने का वक्त आ गया, फिर बहुत जल्दी करते हुए आए, तकबीर कही गई और आपने हल्की नमाज पढ़ाई, फिर हमने हमसे फरमाया जरा देर ठहरे रहो, फिर हमारी तरफ मुतवज्जी होकर फरमाया रात को मैंने तहज्जुद की नमाज में पढ़ रहा था कि मुझे ऊंग आने लगी, यहाँ तक कि मैं जागा, मैंने देखा गोया मैं अपने रब के पास हूँ, यानी यहाँ मुझे ऊंग आने लगी, और फिर आपने अपनी नींद में ये देखा कि मैं अपने परवरदिगार को बेहतरीन उम्दा सूरत में देख रहा हूँ। मुझसे अल्लाह ताला ने फरमाया जानते हो आलमे बाला के फरिश्ते इस वक्त किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे रब मुझे क्या खबर। तीन मरतबा के सवाल जवाब के बाद मैंने देखा मेरे दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपना हाथ रखा, यहाँ तक कि उंगलियों की ठंडक मुझे मेरे सीने में महसूस हुई और मुझ पर हर एक चीज रोशन हो गई। फिर मुझसे सवाल किया अब बताओ मलाए आला की बातचीत क्या हो रही है। मैंने कहा गुनाहों के कफारे के बारे में हो रही है। फरमाया फिर बताओ कफारे क्या क्या हैं। मैंने कहा अब ये सुन लें कि ये कफारे, गुनाहों के कफारे किससे होते हैं। मैंने कहा नमाज बा जमात के लिए कदम उठा के जाना, नमाजों के बाद मस्जिदों में बैठे रहना और दिल के ना चाहने पर भी पूरा वजू करना। फिर मुझसे मेरे अल्लाह ने पूछा दर्जे क्या हैं, यानी किन चीजों से दर्जे बुलंद होते हैं। मैंने कहा खाना खिलाना, नर्म कलाम करना यानी नरमी जेंटली बोलना, और रातों को जब लोग सोए पड़े हों उस वक्त नमाज पढ़ना। अब मुझसे मेरे रब ने फरमाया मांग क्या मांगता है। मैंने कहा मैं नेकियों का करना, बुराइयों का छोड़ना, मिस्कीनों से मोहब्बत रखना, तेरी बख्शिश, तेरा रहम और तेरा इरादा जिस कौम की आजमाइश का फितने के साथ हो तो इस फितने में मुब्तिला होने से पहले मौत, तेरी मोहब्बत और तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और कामों की चाहत, जो काम तेरे करीब मुझे कर दे वो मांगता हूँ। यानी ये मसनून दुआओं में भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अंतगफिरली व तरहमनी व इज़ा अरदत फितनत कौमिन फतवफ़नी गैर मफ्तून व अस्अलुका हुब्बका وحب من يحبك وحب وحب عمل يقربني الى حبك। ये एक मसनून दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में आती है कि ये आपने अल्लाह ताला से मांगा। और ये हदीस ख्वाब की है, यानी ये जागे का वाक्या नहीं, ये ख्वाब का वाक्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये सरासर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सरासर हक है, इसे पढ़ो पढ़ाओ सीखो सिखाओ, यानी इस दुआ को किया करो। और इससे हमें पता चल गया कि कफारे क्या हैं, क्या बातें फरिश्ते ऊपर कर रहे हैं। हम सोचते हैं ना फरिश्ते रोबोट्स हैं, वो बस चलते फिरते रहते हैं, कोई बात आपस में ना करते हैं ना कुछ करते हैं, तो फरिश्ते किस बात पे बात कर रहे हैं, वो मलाए आला क्या चीज में उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि नहीं कफारा ये है या दर्जे इस चीज से बुलंद होते हैं या इससे होते हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ। तो फरिश्तों के इस बात का जवाब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और ये यानी ये आयत बता रही है कि मुझे कुछ इल्म नहीं है, अगर मेरा रब ना मुझे बताए तो मुझे क्या पता कि मलाए आला किस बात में झगड़ रहे हैं। यूहा इलैया, नहीं वही की जाती मेरी तरफ, इल्ला मगर ये सिवाय इसके कि अन्नमा अना नदीर मुबीन, मगर मैं डराने वाला हूं, यानी कोई माने या ना माने मेरा काम यह है कि मैं इंतजार कर दूं, मैं तुम्हें पहुंचा दूं, मैं तुम्हें वहां का बता दूं, ये डर बता दूं, वॉर्न कर दूं। इज कॉल रब्बू कलिल मलाइकति, अब वो किस्सा आ रहा है जो हम ये कुरान करीम में 7 दफा किस्सा आ चुका है, तो हम 6 दफा पहले पढ़ चुके हैं आदम और इबलीस का किस्सा, अब ये 7वीं और आखिरी दफा आ रहा है कुरान पाक में, इसके बाद ये किस्सा बाकी पारों में नहीं आएगा। इज कॉल रब्बू कलिल मलाइकति, जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं पैदा करने वाला हूं एक इंसान को गीली मट्टी से। अल्लाह ताला ने अपना ये इरादा फरिश्तों के सामने रखा, और हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं कि फिर फरिश्तों ने क्या कहा था, ठीक है। फइदा, फिर जब, सब वही तो हूं, जब मैं दुरुस्त कर दूं उसको, यानी मैं उसको ठीक ठाक कर दूं, व नफख्तु फीह मिन रूही, और जब मैं फूंक दूं उसमें अपनी रूह, अपनी रूह का मतलब क्या, यानी ये एक निस्बत है जो जिसको कहते हैं इजाफत तशरीफी, यानी शर्फ के तौर पे ये कहा गया, मैं अपनी रूह फूंक दूं। अल्लाह ताला माफ करे, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कोई अल्लाह का हिस्सा बन गया या कुछ है, लेकिन जैसे बैतुल्लाह है, नाकतुल्लाह है, वो अल्लाह की कोई ऊंटनी तो नहीं है ना, या ये कोई अल्लाह का घर तो नहीं है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह इसमें रहता तो नहीं है, तो लेकिन ये किस लिए होता है, शर्फ के लिए, कि अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी को शर्फ दिया, इस घर को शर्फ दिया, अब्दुल्ला अल्लाह ने इस बंदे को शर्फ दे दिया जिसको कह दिया कि ये मेरा बंदा है, अल्लाह का बंदा ये। अब नाम तो हम खुद बेशक रख भी लें, लेकिन जिसको अल्लाह फरमा दे कि मेरा अब्द है तो ये उसके लिए ऑनर है, तो ये ऑनर की चीजें होती हैं। तो इसलिए कहा गया मेरे रूह ही, मेरी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से रूह फूंकी इसके अंदर। वैसे तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने रूहुल्लाह फरमाया, तो ये आदम अलैहिस्सलाम की इसमें एक बहुत बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंकी, यानी चाहे फरिश्ते के जरिए फूंकी, चाहे अल्लाह ताला ने खुद फूंकी, यानी बाकी लोगों में तो बाकी इंसान जो है उनके अंदर तो फरिश्ता फूंकता है ना रूह, कि वो माँ के पेट में होते हैं तो फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजते हैं और वो रूह फूंकता है, जैसे हदीस में हमने पढ़ा हुआ। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने उनमें अपनी रूह फूंकी, यानी अल्लाह ताला ने खुद फूंकी रूह, अपनी रूह से मतलब है वो तो एक इज्जत के तौर पे, ठीक है। जैसे एक जगह पे ये भी आता है कि 4 चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से बनाया, एक आदम अलैहिस्सलाम को, एक जन्नत की जो आला तरीन नेमते हैं ना उनको सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, आला तरीन जन्नतियों की जो नेमते हैं, माने बाकी जन्नत को नहीं लेकिन जो यानी टॉप की जन्नत है जहां पे टॉप के लोग जाएंगे। नंबर 3 तौरात को अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से लिखा, और नंबर 4 कलम को या अर्श को अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से बनाया, ठीक है। तो ये एक फजीलत आदम अलैहिस्सलाम की बाहर कैफ है कि अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी। फकाउ लहू साजिदीन, तो गिर पड़ना तुम उसमें उसके आगे सजदा करते हुए। अच्छा, एक बात नोट करने की ये कि जब अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तब फरमाया कि सजदे में गिर पड़ना, इससे हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब रूह कोई आला चीज है। पहले तो जिस्म था सिर्फ, उस वक्त नहीं फरमाया कि जो मिट्टी का पुतला होगा उसके आगे ताजीम के साथ झुक पड़ना, बल्कि जिस वक्त रूह फूंक दी तो उस वक्त, तो सारे जो ताजीम है ना वो इस रूह की है, असल चीज ही रूह है। आपकी जिस्म तो यानी मट्टी थी, वो मट्टी से आया था, मट्टी में ही चला जाएगा, तो और ये सजदा कौन सा था, सजदा ताजीमी था। और ये भी याद रखिए कि जब इंसान इतने लेवल तक झुक जाए जितना वो रुकू करता है, यानी बैक अपनी पूरी नीचे करता है, उसको भी एक सजदा कहा जाता है, ठीक है, वो भी सजदे के कायम मुकाम ही होता है। लेकिन यहाँ पे बाकायदा सजदा करने को कहा गया। पहली शरीयतों में ये सजदा जायज होता था, लेकिन हमारी शरीयत में सजदा ताजीमी भी हराम करा दे दिया गया। इबादत का तो हमेशा ही हराम था, लेकिन यानी किसी को भी नहीं आप कर सकते, लेकिन सजदा ताजीमी भी नहीं आप किसी को कर सकते हमारी शरीयत में। या तो किसी झंडे के आगे इस तरह से पूरा झुक जाना कि रुकू की पोजीशन तक चले जाना, ये भी एक तरह का सजदा होगा, ये भी मना है। या किसी इंसान के आगे इस तरह से झुक जाना, कोई कोच है, कोई कुछ है, कोई कुछ सिखाने वाला है, कोई बादशाह है या कोई कुछ है, किसी के आगे भी नहीं ऐसे झुक सकते। फसजद अल मलाइका तो कुल्लु मजमाउन, सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सब के सब ने इकट्ठे। यहां से फरिश्तों के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का हमें पता चलता है। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अब इबलीस उनके अंदर क्यों था, क्या वो भी फरिश्ता था? ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इबलीस फरिश्ता तो नहीं था, मगर उसके काम, उसकी इबादत, उसकी अल्लाह तआला की यानी तस्बीह करना और फरमाबरदारी करना इतनी आला दर्जे की थी कि अल्लाह ताला ने उसको जमीन से उठा के आसमानों पे फरिश्तों के साथ कर दिया था। वैसे जिन्नात जो होते हैं, क्योंकि शैतान भी जिन है, तो वैसे जिन्नात कहाँ पे रहते थे? जमीन पे रहते थे। इस जमीन पे जिन्नात का ये मस्कन थी, आसमानों पे तो फरिश्ते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको इतना एलिवेट किया, इसके इतने दर्जे बुलंद कर दिए कि फरिश्तों के बराबर इसको वहां पे भी जगह मिल गई आसमानों पे। ठीक है, इस तकबरा, उसने बस तकबर किया, वह काना मिनल काफिरीन, और हो गया वो काफरों में से। काफिर का लफ्ज यहाँ पे क्यों आया, ये बहुत नोट करने की बात है। उसने अल्लाह का इनकार तो किया ही नहीं था, ये नोट करें, कब उसने अल्लाह का इनकार किया था? कब उसने कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता? हम तो यही सोचते ना, काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानता। यहां पे पता चल रहा है जब अल्लाह ताला ने फरमाया उसने कुफर किया, वो काफरों में से हो गया, इसका मतलब है वो भी कुफर है जब इंसान अल्लाह ताला के हुक्म को साफ तौर पे कह दे कि मैंने नहीं करना, इनकार कर दे अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह की इताअत से इनकार करना भी कुफर है। और इसको कोई कुछ समझता ही नहीं, यानी इंसान अपने मुल्क के लॉज को या एक सदर के या अपने बॉस जो ऑफिस में होता है उसके हुक्म को भी कुछ समझ लेता है, लेकिन इतनी सी भी अहमियत जितनी एक इंसान के हुक्म को देता है उतनी भी अल्लाह के हुक्मों को नहीं देता। कहता है जिसका मेरा दिल चाहेगा मैं अमल करूंगा, नहीं चाहेगा नहीं करूंगा। और आप ये देखिए, बहुत सारे सबक है इसमें, आप ये देखिए कि वो इतना ज्यादा अल्लाह ताला का यानी तस्बीह करने वाला, अल्लाह ताला के आगे मैंने झुकने वाला, सब करने वाला था, उसने अल्लाह का इनकार भी नहीं किया था, सिर्फ ये एक हुक्म का इनकार किया। याद रखिए, इसको नोट करिएगा कि सिर्फ एक हुक्म का इनकार किया। उसने ये नहीं कहा मैंने अब आइंदा कभी भी नहीं आपकी बात माननी, ये भी नहीं कहा, बस ये वाला नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि तकब्बुर था ना अंदर आ गया कि मैं करूं, मैं झुक जाऊं इसके आगे, और खुद को बड़ा करना, यही तो तकब्बुर होता है। आला फरमाया ए इबलीस, मा मना कान तजुदा लिमा खलकतु बियदिया, किस चीज ने तुझे मना किया कि तू सजदा करे जिसको मैंने पैदा किया, बियदिया अपने दोनों हाथों से। जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, किस चीज ने तुझे रोका कि तू उसको सजदा करे? इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। अल्लाह ताला के हाथ या अल्लाह ताला का इस हदीस में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के हाथों की ठंडक महसूस हुई, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं किस तरह से हुआ, क्या हुआ, कैसे अल्लाह के हाथ ने, हम ना सोच सकते हैं ना इसको हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, बस जैसे बता दिया हमारा वैसे ही ईमान है। अल्लाह ताला ने उससे सवाल किया, इबलीस किस चीज ने तुझे मना किया कि तू इसको ना सजदा करे जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, यानी इतना बड़ा इसको शर्फ मैंने दिया है और अल्लाह जिसको चाहे शर्फ अता फरमाए, तू क्यों उसको सजदा करने से रुक गया? इस तकबर था, तूने तकबर किया हम कुंता मिनल आली, या तू वाकई बहुत बुलंद मरतबा में से हो गया, यानी आयदर कि तू दिमाग में बड़ाई आ गई है या वाकई तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम ये कहोगे कि मैंने नहीं सजदा करना। काला उसने कहा, आगे से जवाब सुने, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। ये उसने अपनी बड़ी अकलमंदी दिखाई कि मैं बड़ा अकलमंद हूं जो मैं ये बता रहा हूं कि असल में ना मैं बेहतर हूं उससे। اللہ معاف کرے, جب انسان اللہ کے حکم کے آگے کوئی اپنی عقل استعمال کر کے کوئی لاجک دینا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے سب کو اس بات سے. تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ اللہ کو کوئی بات نہیں پتا تو میں اس کو بتاؤں گا. استغفر اللہ ربی, مطلب کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ہماری اتنی مجال ہے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ چیز 1400 سال پہلے تو تھی, اب نہیں ہو سکتی. یہ چیز اس زمانے میں تھی کیونکہ اس وقت گرمی بہت تھی, تو اس لیے وہ منافق بہت تھے, تو اس لیے حجاب کا حکم آیا, آج نہیں ہے اس کی ضرورت. اس زمانے میں یہ چونکہ ایسے تھے حالات, اس لیے کہا گیا. آج یہ قرآن مطلب ہے کہ ایکسپائر نعوذ باللہ ہو گیا کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے احکامات کی ضرورت نہیں, ہم بہت ماڈرن ہو گئے. جب انسان لاجک پیش کرے, یاد رکھے یہ بات, اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تم اپنی عقل استعمال کر کے کچھ بتا رہے ہو. یہ شیطنت ہے, یہی شیطان کا رویہ تھا. اور انا خیر من, یہ چیز کہ میں بہتر ہوں اس سے, یہ انسان کو یہی چیز ہے جو یہ تکبر کہلاتی ہے, کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ سے بہتر ہوں, اللہ معاف کرے, اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اسی سے کہہ رہا ہوں اس سے بہتر ہوں میں, اللہ کے پاس کوئی میں ایسی گستاخی نہیں کر رہا, میں تو اس سے بہتر کہہ رہا ہوں. یعنی انسان جب بھی اپنی بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ کیسے بھی, میں رنگ اور صورت میں اس سے بہتر ہوں, میں عقل میں اس سے بہتر ہوں, میں ذات پات میں اس سے بہتر ہوں, میں جس قوم سے تعلق رکھتی ہوں میں ان دوسری قوموں سے زیادہ بہتر ہوں, یہ ساری چیزیں شیطانی چیزیں کہ انسان خود کو خود بہتر سمجھے. ہاں اللہ کسی کو کسی پہ فضیلت دے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اللہ نے دی فضیلت, لیکن اس کے اندر یہ نہیں کہ انسان خود اپنی فضیلت خود بیان کرنے لگے, یہ نہیں انسان کر سکتا, یہ شیطانی عمل ہے. اور آج دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس چیز کے اوپر انسان فضیلتیں اپنی کرتا ہے, جگہ جگہ ہم اپنی فضیلت بیان کرتے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کے بہتر سمجھتی ہوں, چاہے اپنی کوکنگ میں, چاہے اپنی عقلوں میں, چاہے اپنی صورتوں میں, چاہے اپنے ہنر میں کسی میں, کہ مجھے زیادہ آتا ہے, مجھے زیادہ پتا ہے, میں زیادہ بہتر ہوں دوسروں سے. انا خیر من, کتنی جگہ پہ ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں, چاہے ہم منہ سے نہیں بھی بول رہے ہیں, اپنے قبیلہ یا اپنا خاندان یا اپنی ذات یا اس میں کتنی فضیلت سمجھتے ہیں, یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو عزت اس کو دی ہے, فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے. تو تقویٰ والے کو عزت عطا فرمائی, یہ اللہ نے فضیلت دی, تم نے کدھر سے فضیلتیں منا لی کہ میں اس لیے عزت والی زیادہ ہوں کیونکہ میں فلاں خاندان سے ہوں, یا میرے پاس اتنا مال و دولت ہے, یا میں حسین بہت ہوں. تو اس نے یہ بڑائی کی تھی کہ انا خیر من, اس سے بہتر. شیطان نے انسان سے اپنے آپ کو بہتر کہا تھا, آج کئی انسان دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر کہہ کے اسی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ تکبر آتا ہے, یہ ہے تکبر, اسی سے تو بچنا ہے. خلقتنی من نار, تو نے پیدا کیا ہے مجھ کو آگ سے, وخلقتہ من تین, اور بھی زیادہ لاجک دی کہ اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. یہ جسٹیفیکیشن پیش کی نا کہ دیکھیں میری غلطی نہیں ہے, میں تو اس لیے نہیں سجدہ کر رہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا یا مٹی سے پیدا ہوا, کہاں ہماری برابری ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, اول تو یہ بات ہی غلط ہے, آگ کو افضل سمجھنا مٹی سے, یہ بات ہی غلط ہے. اس میں بہت سارے تفسیروں کے اندر آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مٹی بہتر ہے آگ سے, آگ نہیں ہے بہتر, اس نے غلط سمجھا. لیکن بال فرض مان لے کہ اس نے صحیح سمجھا, بال فرض واقعی آگ افضل ہو اگر مٹی سے, مان بھی لیا, تو پھر بھی اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی یہ نہیں لاجک دے سکتا کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ دیکھیں میرا جو پوائنٹ ہے نا بڑا ویلڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر بات تو وہی ہو گئی کہ اللہ آپ کو نہیں پتا چلا, مجھے زیادہ پتا ہے. نمبر ٹو بات, وہ خود مان رہا ہے, اس کو نوٹ کریں, خلقتنی, خلقتہ, تا کو نوٹ کریں, تو نے پیدا کیا, تو نے ہی پیدا کیا مجھے آگ سے, تو نے ہی پیدا کیا اس کو مٹی سے, تو پھر میری کیا فضیلت ہو گئی؟ अल्लाह जिससे अल्लाह ने चाहा उसे पैदा कर दिया, तो फिर मेरी इसमें क्या बड़ाई हो गई? अगर किसी को अल्लाह ने माल दे दिया, किसी को अल्लाह ने बहुत बड़ा इज्जत वाला तो इज्जत दे दी, कोई बड़ा ओहदा दे दिया, कोई अच्छी शक्लो सूरत दे दी, अगर आपको अकल ज्यादा दे दी, अगर आपको कोई हुनर ज्यादा दे दी, तो इसमें आपका क्या बड़ाई है जिसपे आप कहें अना खैरुम मिन दी? तो फिर अल्लाह ने, फिर प्रेज तो अल्लाह की होनी चाहिए, तारीफ तो अल्लाह की होनी चाहिए जो देने वाला है, फिर इंसान की क्या तारीफ रह जाती है, फिर इंसान की क्या बड़ाई रह जाती है? बड़ाई तो तब होती है भाई इंसान का, भाई हाँ वो तो अल्लाह ताला तो मुझे बदसूरत बना रहा था, मैंने लेकिन खुद अपने आप को खूबसूरत बना लिया, अल्लाह तो मुझे नहीं दे रहा था लेकिन मैं खुद अमीर बन गई, मतलब तो फिर सब कोई समझ भी सकते हैं, अल्लाह तो जानवर बना रहा था मैं खुद इंसान बनी हूं, तो फिर तो चलो कोई आपकी समझ आ सकती है बड़ाई, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो फिर किस चीज की बड़ाई है? सब कुछ तो अल्लाह ही का दिया हुआ, फिर बड़ाई किस बात की? अगर इंसान सोचे तो उसका कुछ भी अपना नहीं है, उसके जिस्म से लेके उसकी जितनी पोजेशंस है सब को ले ले, सब अल्लाह की दीनी, और जब चाहे अल्लाह वापस ले ले, इसी जिंदगी में भी अल्लाह ताला वापस ले सकता है, इन आजा में से कोई चीज भी अल्लाह वापस ले सकता है, जिंदगी को वापस ले सकता है, माल को ले सकता है, औलाद को ले सकता है, किसी चीज को भी वापस ले ले, तब लेके दिखाइएगा, फिर कह दें कि मैंने नहीं देनी, ये आंखें हैं अल्लाह जब चाहे वापस ले ले, अकल है अल्लाह जब चाहे वापस ले ले। इंसान जाते जाते कुछ लोगों को देखा एक्सीडेंट हुए, बिल्कुल दिमाग उलट गया, अब दिमाग सही है ही नहीं है, और टांगे नहीं रहती लोगों की, कोई बीमारी ऐसी आती है कि उनके आजाब मुतासर हो जाते, वैसे वो पैरालाइज हो जाती है आजाब, तो क्या चीज है इंसान की अपनी, कोई मर्जी भी नहीं है फिर तो आपकी, तो फिर किस चीज की बड़ाई है? वो मान रहा है कि तूने मुझे पैदा किया आग से, तूने इसको पैदा किया, तो फिर किस चीज की बड़ाई रह गई तुम्हारी? लेकिन ये बात नहीं उसको समझ आई। इंसान बड़े अक्लमंद बनते हैं जब वो अल्लाह के हुक्मों के आगे अपनी लॉजिक्स भी देते हैं, तो बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम कितने अक्लमंद है कि हमें ये बात समझ आ गई, लेकिन उस बात में अगर डेप्थ में जाके देखा जाए तो कुछ भी समझ की बात नहीं होती, इंसान की बेवकूफी ही होती है। और लेकिन फिर भी इंसान इतना ढीठ है, देखो दुनिया के अंदर किसी जगह पे जॉब कर रहा हो, किसी जगह पे कोई भी कोई किसी के अंडर हो, कभी नहीं किसी से पूछता कि आपने ये क्यों कहा है मुझे, अपने बॉस से कोई नहीं पूछेगा आपने मुझे ये क्यों हुक्म दिया, ये मुल्कों में कोई नहीं पूछेगा जाके आपने ये क्यों लॉ बनाया कि रेड बत्ती पे हम खड़े हों और ग्रीन पे चलें, मैं तो ग्रीन के ऊपर रुकना है और रेड पे मैंने चलना, कोई नहीं ये कहता है, बिला चूचरा माने जा रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्मों के आगे हमें कितनी लॉजिक्स पेश करनी आती, हर कोई अपने आप को अकलमंद समझता है, यानी जिसको उठा के देख लो वो कहता मेरे से ज्यादा अकलमंद ही कोई नहीं, अल्लाह के हुक्मों के आगे मैं जो भी बोलूं, तो तब उसका देखे फिर अंजाम क्या हुआ, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा यहां से तू मरदूद है दुदकारा हुआ, वह इन अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तेरे ऊपर मेरी लानत है कयामत के दिन तक, जिस दिन लोग उठाए जाएंगे उस दिन तक। अब आप यहां पे मुझे बताइए कि उसके गुनाह थे कितने, मुझे ये बताएं कितने गुनाह थे, चार थे, दस थे, सौ थे, हजार थे, या कितने थे? एक गुनाह था, एक गुनाह पे भी पकड़ हुई है, आदम अलैहिस्सलाम की भी एक ही गलती थी, उस पे वो जन्नत से निकाले गए हैं। हम सोचते हैं कि थोड़े थोड़े गुनाह तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन से इतने गुनाहगार हैं, हम इतने अल्लाह के फरमाबरदारी करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो तो लिस्ट हमारे पास बहुत हमारी नजरों के सामने होती है कि हम कितने नेकी के काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम तज्जुद पढ़ते हैं, हम ये रोजा रखते हैं, फलां करते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, अगर हमने चंद एक, ये बस छोटी छोटी बातें हैं ना जो नहीं हम कर पाते, जो हमसे नहीं होते, जो हम नहीं मानते, तो क्या हो गया? छोटी छोटी ये थोड़ी सी चीजें हैं जो बस जिसमें हमने नहीं मानी अल्लाह की, इतना भी फिर क्या हो गया, बाकी तो हम सारा कुछ करते हैं ना, तो बताएं शैतान ने कितनी बातें नहीं मानी थी, वो भी तो कितना नेक था, सिर्फ एक ही तो नहीं मानी थी ना उसने। ये याद रखिए, अगर अल्लाह पकड़ने पर आए तो वो मालिकल मुल्क है, जिस चीज पे चाहे पकड़ ले, चाहे किसी की एक ही बात पकड़ ले, और छोड़ने पर आए तो चाहे उसकी सारी जिंदगी के गुनाह एक पल में माफ करके रख दे, मालिकल मुल्क है, उसकी मर्जी, उसकी बादशाहत है। कभी ना बेखौफ हूं कि मैं एक इतने से तो मैं गुनाह करती हूं, मेरी बाकी सारी नेकियां, नो, हमें क्या पता वो एक ही गुनाह को अल्लाह ताला उस दिन पकड़ ले तो हम क्या करेंगे। जैसे इब्लीस का एक ही गुनाह पकड़ा गया, आदम अलैहि सलाम ने भी कोई ढेर नहीं लगा दिए थे जन्नत में गुनाहों के, एक पाली खाया था ना, एक, तो क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, तो एक दो तो कुछ चीज ही नहीं है ना, हमारे लिए एक दो नाफरमानियां तो हम एवरी डे ही करते रहते हैं, उनके ऊपर ढीठ है। अल्लाह ताला को ये ढिठाई पसंद नहीं है कि इंसान ढीठ हो जाए, इंसान को गलती हो जाए वो बुरी बात नहीं, फौरन उसकी माफी मांग ले। अगर शैतान उस वक्त माफी मांग लेता तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देते, ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, वो ढीठ हो गया, ढीठ हो गया, और उसने आगे से लॉजिक्स देनी शुरू कर दी और अब जस्टिफिकेशंस बतानी शुरू कर दी। कयामत के दिन याद रखें, इंसान ये नहीं कहेगा कि हाय मैंने कितने बड़े बड़े गुनाह किए थे वो इस अमालनामे लिखे हुए, वो कहेगा जैसे कुरान कहता है कि वो कहेगा हाय इसके अंदर कोई बड़ा कोई छोटा रह ही नहीं गया, वो डरेगा अपने अमालनामे को देख देख के, छोटे गुनाहों से भी डरेगा। तो ये ना सोचेंगे छोटा कुछ नहीं होता, ये इतने से कुछ नहीं होता, अल्लाह गफूर रहीम है, तो फिर अल्लाह ताला जाने देते शैतान को, कोई बात नहीं, एक सज्दा ही तूने नहीं किया पहले तो तेरा ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है। नो, मजाकी बात, ये बहुत डरने का मुकाम है, हमेशा डरते रहना चाहिए इस बात से, अल्लाह कहीं पकड़ ना कर ले हमारे, इसके ऊपर बेबाक नहीं हो जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला की लानत है उसके ऊपर, यानी अल्लाह की रहमत से वो दूर है और दूर रहेगा कयामत तक, अल्लाह की रहमत नहीं उसके ऊपर होगी, तो जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत ना हो फिर वो जाएगा कहां। قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون, उसने कहा कि अच्छा फिर ठीक है अल्लाह, फिर मुझे भी मोहलत दे दे उस दिन तक जब सारे उठाए जाएंगे। किस लिए ज्यादा मोहलत मांग रहा था, कि मैं ज्यादा दिन इनको बहकाऊं। قال, अल्लाह ताला ने फरमाया, فانك من المنذرين, तो तुम हो फिर ठीक है, तू है फिर मोहलत दिए जाने वालों में से, वो उसको दे दी अल्लाह ताला ने मोहलत। देखिये उसने अल्लाह से जो दुआ की, जो मांगा अल्लाह ने दे दिया, इला योमिल वक्तिल मालूम, मालूम वक्त के दिन तक, यानी कयामत तक। इसका मतलब है उसका ईमान कयामत पे भी है, उसको पता है कि कयामत का दिन है और वो इस पे यकीन रखता है, तभी कह रहा है ना कि उस दिन तक के लिए मुझे मोहलत दे। और रब भी कहा है उसने, ये भी नहीं कहा कि आज से मैंने तेरा इनकार कर दिया, ये भी नहीं कहा उसने, अब नहीं तूने मुझे धुतकार दिया तो मैं नहीं तुझे मानता खुदा, नो, रब भी, रब तू ही है मेरा, और कयामत भी आनी है ये भी पता है उसको, और यकीन भी है इस बात का, इस पे ईमान है, लेकिन देखें इतात नहीं की। इतात ही है जो अल्लाह को मतलूब है, ये नहीं है कि इंसान मुंह से बोलता रहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ लेकिन मैंने उसकी माननी नहीं है, मैं उसको मानता हूं लेकिन उसकी नहीं मैंने माननी, ये नहीं चलता। ये कौन से हमने इस्लाम बना लिए हैं, ये भी बड़ा अच्छा एक मजाक ही बन गया कि नाम अपने बस मुसलमानों वाले और काम अपना कोई भी मुसलमानों वाला नहीं, लेकिन ठीक है हम मुसलमान हैं, हमारे जैसे भी मुसलमान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कितनी, ये स्टोरी हमें कितना कुछ सबक देती है। फिर उसने कहा, काला फाबी इज्जती का, बस तेरी इज्जत की कसम है, लाउहुविन्ना हुम अजमाइन, अलबत्ता मैं जरूर बहकाऊंगा इनको सबके सबको। जब उसने कसम काके कहा तो था सच्चा, सारा वक्त भी वो बहकाता ही रहा आज तक और क्यामत तक बहकाता ही रहेगा लोगों को। उसने अल्लाह ताला की कसम खा के कह दिया, मैं तो गुमराह हुआ हूं ना इसकी वजह से, तो मैं अब अकेला जहन्नुम में नहीं जाने वाला, मैं अब इसको साथ लेकर जाऊंगा। और आप ये देखें, इंस्टेड ऑफ ये कि मेरी गलती थी, हाय ये मैंने गलत कर दिया, ये तो ऐसा, उल्टा वो क्या कर रहा है, आदम के ऊपर इल्जाम दे रहा है, मैं इनकी वजह से मैं गुमराह हुआ इसलिए मैं इनको गुमराह करूंगा, इसकी वजह से मैं यहां से मेरी वैल्यू खत्म हुई, मैं अल्लाह की नजरों में गिर गया और मैं दुत्कारा गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये ऐसे ही है जैसे किसी इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो बजाय वो अपनी गलती मानने के वो कहे जी फलाने की वजह से मेरा, फलाने उसने मुझे ऐसे कराया वरना मैंने तो करना ही नहीं था, वो इसने ना ऐसे किया होता तो मैंने भी नहीं करना, वो असल कसूर उसका है। आप बजाय खुद तौबा करने या सॉरी करने के या अपना अपनी इसलाह करने के इल्जाम दूसरे पे थोप दिया, अब इसकी वजह से चूंकि हुआ है इसलिए अब उसके बैर पड़ गए, अब उसके पीछे पड़ गए, अब उसके साथ दुश्मनी शुरू कर दी, अब जहां वो मिल रहा उसको जलील करने पड़ जलील करने शुरू होगा कि इसकी जिद में कि मैं जो नहीं, इसकी वजह से हुआ था ना उस वक्त में मुझे मेरी बेइज्जती हुई थी या मैं मेरे साथ ये मसला हुआ था या मैंने इसकी वजह से गलत किया, अब मैं इसको भी देखो अब मेरी दुश्मनी है इसके साथ। यही शैतान ने किया, ये कई इंसानों के अंदर यही चीजें हैं। मसला किसी की जॉब चली जाती किसी की वजह से, उसके बाद देखो वो उसका कैसे करता है, बजाय इसके कि ये देखे कि मैंने क्या गलत किया, मेरी अपनी कसूर है जिसकी वजह से गई, नहीं इसकी वजह से गई, इसका कसूर है सारा। इसी तरह और भी चीजों में देख लें, जो सिर्फ जॉब की नहीं बात है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान अपनी गलती नहीं मानता, बस इसका कसूर। अब उसने सारा कसूर लेके ना आदम अलैहिस्सलाम पर डाल दिया, इनकी वजह से मैं नहीं यहां से हुआ, तो अब मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, इसकी औलाद को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे तो ये नहीं है, लेकिन वहां पे और जगहों पे अजमाइन सबके सबको गुमराह करूंगा, यानी बनी आदम को सबको गुमराह करूंगा, और वो सारी जिंदगी लगा रहता है, इसके चेले भी हैं वो भी इंसान के पीछे लगे रहते हैं और उसको छोड़ते नहीं है जब तक इंसान मर नहीं जाता, उसकी जब तक रूह नहीं निकल जाती ना, यानी इंतहा देखें कि जब इंसान की मौत का वक्त आता उस वक्त सबसे ज्यादा हमले होते हैं शैतान के, कि अब ये मेरे हाथ से बच के ना चला जाए, अब ये बच गया तो फिर तो उसके बाद मेरे हाथ में कभी आने का नहीं, अब इससे कलमा कुफर कहलवा लूं, यानी सोचे ना इंसान का एंड आया हुआ है कि अब एंड पे आके अगर ये कलमा कुफर बोल देगा तो शैतान कामयाब हो गया, तो वो उस वक्त बहुत हमले करता है। इसी वजह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमाना, ईमान पे हमारा खात्मा हो, और ये इस चीज से कभी इंसान अपने आप को सेफ ना महसूस करे जब तक वो यानी उसको मौत ना आ जाए ईमान पर, उस वक्त तक कोई इंसान बेखौफ होके नहीं बैठ सकता, कोई नहीं पता इंसान का कि वो किस वक्त पलट जाए, किस वक्त मौत के वक्त उसको अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मौत के वक्त कोई खदशात कोई शुभात आने शुरू हो जाए, कोई वसवसे शैतान डाले और इंसान पलट जाए, इंसान का कोई पता नहीं है कौन है सेफ है, हम नहीं कह सकते। सबको इस चीज में अपनी फिक्र करनी चाहिए और सबको डरना चाहिए। तो उस वक्त उसने ये बात कही थी और वो इस पर पक्का ही रहा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे जो मुखलस बंदे हैं ना अल्लाह मैं उनको नहीं बहका सकूंगा जो तेरे चुने हुए बंदे हैं, यानी चुने हुए कौन, खालिस जो तेरे बंदे हैं जिनका ईमान खालिस है, प्योर ईमान वाले जिनके ईमान में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिलावटें नहीं है, फिर जाहिर है उनको उनकी अल्लाह भी हिफाजत करता है। ये अपना जोर तो लगाता है, ऐसा नहीं कि जोर नहीं लगाता, ये अपना जोर लगाता है लेकिन फिर बहका नहीं पाता, वो समझ जाते हैं कि ये शैतान का बहकावा है, इसका जोर चलता नहीं है। قال فالحق, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है फिर बस हक है, क्या والحق का अकूल, और मैं हक की बात कहता हूं, ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है मगर जब वो कसम खा के फरमा दे तो बाद में जोर आ जाता है, इसी तरह फरमाया हक है और मैं हक ही बात कहता हूं कि لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين, ठीक है मैं भी फिर जरूर भर दूंगा जहन्नम को तुझसे और जो तेरी पैरवी करेंगे उन सब से, तो जो इसके पीछे चलेगा उसके साथ भी फिर अल्लाह की बात ये हक हो जानी है कि इसने तो जाना ही जाना है, फिर इसके जो फॉलोअर हैं वो भी जाएंगे, जो जिसके पीछे चलेगा वो उसी के साथ होगा क्यामत में, जो शैतान के पीछे चलेंगे तो शैतान का तो ये ठिकाना है, इसकी इताहत जहन्नम तक ले जाती है। फिर क्या इस रास्ते में इसको फॉलो करेंगे जैसे इसने कहा अना खैरुम मिन, फिर क्या इस रास्ते में इसको फॉलो करेंगे कि इसने कहा अल्लाह तेरे तूने तो हुक्म दिया लेकिन मेरी लॉजिक ये है, ये इसका ही रास्ता है ना, शिर्क और कुफर का रास्ता इसी का है, अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता इसी का है, अल्लाह ताला ने तो फैसला दे दिया कि जो इसको फॉलो करेगा वो सब इसी के साथ होंगे। कुल ए नबी, आप कह दीजिए मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं करता, मैं जो ये तुम्हें सारी बातें बता रहा हूं आप देखें दुनिया के फायदे की कोई बातें बताए ना तो इतने इतने पैसे लेते हैं, मसलन आपको कोई बातें बताएं कि कोई आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट करें आप यहाँ पे करें इससे आपको फायदा होगा इससे वो, यहाँ डॉक्टर है वो आपको बीमारी से वो उसके लिए आपका इलाज करता है तो उसके पैसे लेता है कि आपसे एक तकलीफ को दूर करने के लिए या कुछ, पैगंबर देखें इतनी बड़ी तकलीफ से हमें निजात दिलाने के लिए नुस्खे बता रहे हैं हमें और इतनी बड़ी कामयाबी के लिए हमें रास्ता दिखा रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं मांगते इसके बदले में, इसी से उनकी सिंसेरिटी पता चलती है कि उन्होंने कुछ नहीं सवाल किया, कुछ नहीं मांगा लोगों से, इतनी बड़ी बात बताने पे भी कुछ चार्ज नहीं किया उन्होंने लोगों को। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और ना ही मैं तकल्लुफ करने वाला हूं। तकल्लुफ क्या होता है? तकल्लुफ का माना है किसी मुश्किल को नागवारी के साथ बर्दाश्त करना। कोई बात मुश्किल है ना, उसको आपको नागवार भी लगती है लेकिन आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। साहबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तकल्लुफ से मना फरमाया। हजरत ज़ैनब से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था तो जब उनके पास गए रात को तो उन्होंने प्याला दूध का हजरत ज़ैनब की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने फरमाया कि नहीं मुझे तलब नहीं है। आपने फरमाया झूठ और तकल्लुफ को, झूठ और भूख को साथ ना मिलाओ। यानी ये एक तकल्लुफ है, अगर आपका जी चाह रहा है या अगर आपको भूख लगी है तो ले लो, नहीं है तो फिर मतलब आप ऐसे एक यानी अगर भूख लगी भी हुई है फिर जस्ट ऐसे कह देना कि मुझे नहीं चाहिए और बस तकल्लुफ करना, ये कोई पसंदीदा बात नहीं है और पैगंबरों का ये तरीका नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये बता दें, अगर हमारी जिंदगियां देखी जाए हमारी तो जिंदगियां शुरू से आखिर तक ही तकल्लुफ है। यानी किसी कोई हमारे सामने कोई चीज पेश भी करे तो तब भी हमने तकल्लुफ ही करना है, जब कोई लोग आने लगे तो तब भी हमने तकल्लुफ करना है। सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुलेमान फारसी जो थे वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम मेहमान के लिए उस चीज का तकल्लुफ ना करें जो हमारे पास नहीं है और जो चीज हमारे पास मौजूद हो उसको पेश करते हैं। यानी अब ऐसे तकल्लुफ करना नहीं भी है, उल्टे सीधे हो रहे हैं, ना गवारी भी हो रही है, लेकिन नहीं हमने वो चीज करके रहनी है क्योंकि हमारी नाक ना कट जाए। हमें तकल्लुफ करना ही है, हमें शादियों के ऊपर बड़ा ही खर्च करना है ताकि हमें लोगों के अंदर हमारा बड़ा नाम रहे कि कितनी धूमधाम से शादी की। सब तकल्लुफात है, इनको पसंद नहीं किया गया। जितना आपके पास है उतना करो, उसके अलावा नहीं करने की जरूरत। वो जरूरी कि हम आउट ऑफ द वे जाके कर्जे ले लेके चीजें करें बस तकल्लुफ की वजह से। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, नहीं है ये जिक्र नसीहत लेकिन तमाम जहान वालों के लिए, नहीं है ये मगर नसीहत तमाम जहान वालों के लिए। ये कुरान सारे जहान वालों, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है, सब इससे फायदा ले सकते हैं। वला तालमुन्ना नबअहु बादही, और अलबत्ता तुम जरूर जान लोगे खबर इसकी एक वक्त के बाद। आज नहीं भी तुम्हें समझ आ रही तो तुम देख लोगे एक वक्त के बाद। कौन सा वो वक्त? यानी जब मौत आएगी ना सब खुल जाएगा फिर। आज नहीं समझ आ रही ये बातें, आज नहीं नसीहत लेनी इन बातों से, आज नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बातों से, ठीक है सुन ली है बस सही है, नहीं आज नहीं ना नसीहत लेते तो सब समझ आ जाएगी एक दिन एक वक्त के आने पर। और वो वक्त कौन सा है कि जू ही जब आंखें बंद होंगी सब समझ आ जाएगी। फिर आखिरी बात कितनी ज्यादा फोर्सफुल है, तुम जरूर जान लोगे इस खबर को एक वक्त के बाद, सब धोखे खुल जाएंगे, हकीकत सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें इस जिंदगी में हकीकत को देखने वाला बना दे कि हकीकत क्या है और बाकी धोखा क्या है। अल्लाह ताला हमारे सामने खोल दे इसको, अरे सूरत से हमें बेहतरीन अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला इसके में जो सबक हैं उनसे हमें सीखने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें चुन ले आखरत की याद से। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم.